आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्लास 10th के साइंस का 5th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम बहुत क्विकली रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक साइज से हम क्या बेसिकली बोल रहे थे, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, यानी कि ऐसा एटम जो कंबाइंड नहीं है किसी दूसरे एलिमेंट से, कंपाउंड फॉर्मेशन उसने नहीं किया हुआ है, वो आइसोलेटेड है। ऐसे एटम का जो रेडियस है उसी को हम रेफर करते हैं एज इट्स एटॉमिक साइज। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब हम लोग एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वहां पर नीचे आते वक्त जो साइज होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त एक शेल की संख्या बढ़ जाती है। हमने ये बात की थी कि शेल की संख्या बढ़ने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है और जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स जो है वो काफी स्ट्रांगली होल्ड कर पाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो साइज डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं इन अ ग्रुप तो वहां पर भी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शेल के एड होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये समझा था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और उसमें से भी जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर जो ग्रुप वन है वो कौन से मेटल्स हैं, वो अल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप टू जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और आप जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें आप लोगों को आपके बुक में जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है पेज नंबर 86 पर, जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है टेबल 5.6 में, इसमें लाइट ग्रीन कलर से मेटल्स को दिखाया गया है, लाइट ग्रीन बॉक्सेस से मेटल्स को दिखाया गया है, लाइट येलो कलर की बॉक्सेस से नॉन मेटल्स को दिखाया गया है। और ये जो लाइट येलो कलर की बॉक्सेस है ये कहाँ है, ये राइट हैंड साइड में, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में है। तो हम ये कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में हमें नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं, और नॉन मेटल्स और मेटल्स को सेपरेट करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, क्योंकि मेटलॉइड्स के अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है, उन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। और ये जो है ये कहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को, राइट हैंड साइड में जो पिंक कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सारे मेटलॉइड्स हैं। और ये जो मेटलॉइड्स है बेसिकली ये एक ज़िगज़ैग लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो ज़िगज़ैग लाइन है ये नॉन मेटल्स को मेटल से सेपरेट कर रही है। और इस ज़िगज़ैग लाइन की फॉर्मेशन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कह सकते हैं, या फिर मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स कह सकते हैं। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये है बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। उसके बाद हमने बात की थी कि मेटल्स की एक खास बात होती है कि ये लोग बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, और यही प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिफाइन करती है कि वो कैरेक्टर जिसके जरिए एक एलिमेंट बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, डोनेट कर दे, वो उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता है। एंड द सेम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। अब इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पर साइज डिक्रीज होता है एटम का, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के काफी पास हैं, जिसकी वजह से उनको निकालना आउटर मोस्ट शेल में से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जब एटॉमिक साइज छोटा है तो उस वक्त न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स है वो काफी मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं इन ग्रुप, तो वहां पर शेल के इंक्रीज होने की वजह से, शेल एक एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से अटोमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाती है ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल से निकालना बहुत इजी हो जाता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। ऑल्सो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप एंड टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करने के बाद उनके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड द नॉन मेटल एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर पर कैसे प्रभाव पड़ता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। जब आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग एलिमेंट्स को, जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, पकड़ और मजबूत होती चली जाएगी। और ऐसा एलिमेंट जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी पकड़ के मुकाबले उस एलिमेंट की जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में है उसकी पकड़ बहुत ज्यादा होगी ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो उस एलिमेंट को जिसकी पकड़ बहुत मजबूत है ऑन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ मिलेगा आपको, वो आप लोगों को राइट हैंड साइड में मिलेगा। और ऐसे एलिमेंट को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो बहुत खुशी खुशी एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है और ये आप लोगों को राइट हैंड साइड में देखने को मिलता है। और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले करके वो स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज होता है। अब हम देखते हैं कि ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप तब क्या होता है। तो बेसिकली जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं इन अ ग्रुप, तो वहां पर एक शेल का एडिशन होने की वजह से अटोमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, विच मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी दूर हो जाता है न्यूक्लियस से। इसका मतलब न्यूक्लियस की पकड़ उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती है ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर आप आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियस उसके ऊपर उतनी अच्छी मजबूत पकड़ नहीं बनाएगा। इसका मतलब जब हम लोग एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप बट द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को अभी समझाए हैं उसके आधार पे आप लोग एक्टिविटी 5.11 बहुत इजीली कर लेंगे, पेज नंबर 90 पर है ये एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखो एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं और बेसिस जो हैं वो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कोई बेस सबसे अच्छा तब होगा जब वो बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर दे, और कोई एसिड सबसे अच्छा एसिड तब होगा जब वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। अब हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो एसिडिक होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दैट इज वाई बेसिक होते हैं वो। तो ये आप लोगों को देखने को भी मिलता है कि जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को एलिमेंट्स के ऑक्साइड मिलते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जो पहले पेज नंबर 90 पर क्वेश्चंस है सबसे पहले उन्हें डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर 90 पर है वो है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार पर बनाया गया है? वो बनाया गया है ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एंड दिस हेल्प्ड अस इन रिमूविंग द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले ही क्या गड़बड़ हो रही थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोबाल्ट और निकल की पोजिशन थोड़ी अजीब कर दी थी। निकल जो है उसका एटॉमिक मास कम था एज कम्पेयर टू कोबाल्ट, उसके बावजूद भी उन्होंने निकल को कोबाल्ट के आगे रखा था। ये एनामली, ये लिमिटेशन ओवरकम हो पाई थी जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास पर निर्भर नहीं करता, वो एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है, और निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो कोबाल्ट से ज्यादा है, इसीलिए निकल की प्लेसमेंट कोबाल्ट के आगे की जाएगी, कोबाल्ट से नेक्स्ट करी जाएगी। साथ में हम लोगों ने देखा था कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में एक गड़बड़ ये थी कि हम वहां पर आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं समझ पा रहे थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट के दूसरे दूसरे ऐसे फॉर्म्स जिसमें उसके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो क्योंकि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर निर्भर करता था, तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आइसोटोप्स को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस देनी चाहिए या एक ही जगह पर उन्हें रखना चाहिए। तो इसको भी ओवरकम कर पाए हम लोग, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है ऑन एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन एटॉमिक मास, जिसकी वजह से आइसोटोप्स को हम एक ही जगह पर रख पाए, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। तो यहाँ पर आप लोग उनमें से कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो ग्रुप टू को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप टू को बिलोंग करता है, और हमें पता है कि इन अ ग्रुप जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और हम लोगों को ये कैसे पता है? क्योंकि वैलेंसी जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का बॉन्ड बनेगा और कितना बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन किस तरीके का होगा वो डिसाइड होता है बाय दी वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। और एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के सभी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। तो अगर मैग्नीशियम के जैसा केमिकल प्रॉपर्टी दिखाने वाला आप लोगों को कोई एलिमेंट पूछा जाए तो आप कहेंगे कैल्शियम, बेरिलियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो मैग्नीशियम जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसके सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज उसी के जैसी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम, और उसके बाद थ्री पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि नेम थ्री एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स है वो सभी के सभी ऐसे एलिमेंट्स है जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांशियम, कोई भी तीन एलिमेंट्स के नाम लिख दो ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है बी पार्ट, नेम टू एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा कि ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स है उनमें से कोई भी आप लोगों को एलिमेंट्स बताने हैं, तो आप लोग बता सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो कोई से भी नाम आप लोगों को लिख देने हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है, नेम थ्री एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताओ जिनके आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो बिल्कुल भरे हुए हैं। तो ऐसा हमें केवल नोबल गैसेस में ही देखने को मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि नोबल गैसेस के कोई से भी नाम लिख देना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, कोई से भी नाम लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इसका फर्स्ट पार्ट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं और ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को ये इवॉल्व करते हैं, लिबरेट करते हैं, वहाँ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो पूछा जा रहा है कि क्या कोई सिमिलैरिटी है बिटवीन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आपको पता है कि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है. दैट इज वाई दे हैव सेम वैलेंसी, दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे शो सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट है. हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी. व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन. तो आपसे कहा जा रहा है कि हीलियम जो है वो अनरिएक्टिव गैस है और नियॉन जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है. तो इनमें भी सिमिलैरिटी है बिकॉज दे ऑल्सो बिलोंग टू अ सेम ग्रुप. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ये नोबल गैसेस को बिलोंग करते हैं. नोबल गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप 18 में. और इसमें ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है, नोबल गैसेस जो है, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, बिकॉज ऑफ विच इन लोगों को अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोई जबरदस्ती नहीं है, ड्यूप्लेट पूरा करने का कोई उन लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कम्प्लीट है. दैट इज वाई दे आर अनरिएक्टिव. और सभी के सभी जो नोबल गैसेस हैं एक ही ग्रुप में हैं, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सेम वैलेंसी है, इसीलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स. पहले के 10 एलिमेंट्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से मेटल्स हैं ये आपको बताना है. तो अगर हम पहले के 10 एलिमेंट्स को देखें ध्यान से, तो हम लोग देख पाते हैं कि केवल दो ही मेटल्स हैं, लिथियम और बेरिलियम. बाकी के जो है वो अलग अलग है, क्योंकि बोरोन जो है वो एक मेटलॉइड है. उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम भी नॉन मेटल्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय कंसिडरिंग देयर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक. आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के नाम बताए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर है. तो देखो, आप लोगों को जो एलिमेंट्स दिए हैं वो कौन कौन से हैं, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को ये तो पता है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं, और सेलेनियम क्या है, ये एक नॉन मेटल है. तो मेटल्स इनमें से दो ही हैं, एक गैलियम और एक बेरिलियम. अब बेरिलियम और गैलियम में से ज्यादा मेटलिक जो है वो कौन है, गैलियम है, क्योंकि गैलियम का साइज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है बेरिलियम से, जिसकी वजह से बहुत आसानी से जो गैलियम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, और हम लोग कह सकते हैं कि मोर मेटलिक भी है गैलियम एज कम्पेयर टू बेरिलियम. तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी हमने फिनिश कर लिया, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनमें से क्या क्या होता है, आप लोगों को जो जो दिया है उसमें से आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. फर्स्ट ऑप्शन में बोला है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर. तो ये करेक्ट है, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होता चला जाता है. बी पार्ट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है. थर्ड पार्ट है, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली. ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजिली लूज करने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो जो एलिमेंट्स है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते हैं. तो सी पार्ट जो है वो रॉन्ग है. उसके बाद डी पार्ट में बोला है द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तो ऑक्साइड्स जो है वो ज्यादा एसिडिक बन जाते हैं. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्युमिनियम या सिलिकन. आपसे बोला है कि एक एलिमेंट है जिसका एक्स नाम रखा जा रहा है. आप लोगों को एलिमेंट का नाम नहीं बताया जा रहा है, आपको बताना है वो जब कंपाउंड फॉर्मेशन करता है विद क्लोरीन तो उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है XCl2. आपको ये बताना है कि ये जो XCl2 फॉर्मेशन करने वाला एलिमेंट है, एक्स जो है वो कौन है, क्या वो सोडियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या एल्युमिनियम है, क्या सिलिकन है. तो देखो, जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, बेरिलियम, इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वैलेंसी क्या होती है? टू होती है। तो जब ये कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो ये दो बॉन्ड्स बनाएंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो XCl2 फॉर्मूले का कंपाउंड बना है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो ग्रुप टू के एलिमेंट्स ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और उनकी वैलेंसी टू होती है। तो एक्स जो है वो क्या होगा? वो ग्रुप टू का कोई एलिमेंट होगा। तो ग्रुप टू का एक ही एलिमेंट है मैग्नीशियम, जो इस ऑप्शन में ऑप्शन बी के रूप में आपको दिया है। तो ऑप्शन बी आप लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट हैज, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि विच एलिमेंट हैज टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताओ जिनके दोनों शेल्स बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड हों। तो नियॉन जो है वही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो शेल्स हैं और दोनों के दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2A2। ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो 2A2। तो मैग्नीशियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है। उसके बाद सी पार्ट में पूछा गया है कि विच एलिमेंट हैज अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके 3 शेल्स हों और जो सबसे बाहर वाला शेल हो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 14 में क्या कर सकते हैं आप लोग? ग्रुप 14 में जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा वही होगा यहाँ पर इसका आंसर। तो थर्ड पीरियड का कौन सा एलिमेंट है? सिलिकन है। सिलिकन थर्ड पीरियड में आता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका मतलब इसके पास 3 शेल्स हैं। उसके बाद डी पार्ट में पूछा गया है कि विच एलिमेंट हैज अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसके 2 शेल हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरोन होगा इसका आंसर, क्योंकि बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 शेल्स हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद ई पार्ट में पूछा गया कि विच एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके सेकेंड शेल में पहले शेल के मुकाबले दुगना इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो पहला जो शेल होता है वो तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो और कुल उसके पास जो शेल्स की संख्या हो वो 2 हो। तो आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप लोग कार्बन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो है उसके पास 2 शेल्स हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके फर्स्ट शेल के तुलना में दुगना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ अ पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। अब आपको पता होगा वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, यानी कि ग्रुप की बात की जा रही है कि एक ग्रुप के अंदर बोरोन के जैसी प्रॉपर्टीज किसके पास होंगी, कौन से एलिमेंट्स के पास होगी। तो बोरोन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होगी। तो बोरोन के जैसी प्रॉपर्टीज आप लोगों को एल्युमिनियम में दिखेगी, इंडियम में दिखेगी, गैलियम में दिखेगी और थैलियम में दिखेगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी क्या प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। तो आप लोग कहेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, और वो क्यों होंगी? वो इसलिए होंगी क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, इनकी वैलेंसी भी सेम है, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की वो भी सेम है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा गया कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। तो फ्लोरीन के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन है एक दूसरे के साथ। तो सेम आप ये लिखेंगे कि ये जो फ्लोरीन के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, इनकी वैलेंसी सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। एंड ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे बिलोंग टू अ सेम ग्रुप, विच इज ग्रुप नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? वो 17 होगा। और यही आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो 17 होगा। उसके बाद बी पार्ट में पूछा गया है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के नाम बताए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट के जैसा इस एलिमेंट का, जो आप लोगों को एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इस एलिमेंट का किस एलिमेंट के जैसा केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर दिखेगा। तो 287 लिखा है, 17 है इसका एटॉमिक नंबर, विच मीन्स इस ग्रुप 17 का मेंबर है। तो ग्रुप 17 के दूसरे मेंबर्स की जैसे इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि फ्लोरीन के जैसी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द पोजीशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन बताई गई है। जो ए एलिमेंट है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, बी है ग्रुप 16 का मेंबर, सी जो है वो भी ग्रुप 17 का मेंबर है और वो नीचे है ए से। अब आप लोगों को ग्रुप क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं अलग अलग पार्ट्स करके, और फर्स्ट पार्ट में पूछा है स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल। तो सिंस जो एलिमेंट ए है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर नॉन मेटल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज नॉन मेटल। उसके बाद बी पार्ट में पूछा गया है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो यहाँ पर ग्रुप 17 की रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, ग्रुप 17 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है नीचे की ओर आते हुए तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप के अंदर जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो एलिमेंट सी है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एलिमेंट ए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। सी जो है वो बी से छोटा होगा साइज में या बड़ा होगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सी जो है वो कहाँ है, वो राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में जब एलिमेंट्स जाते हैं इन अ ग्रुप सॉरी इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है, तो जो सी एलिमेंट है ये साइज में छोटा होगा एज कम्पेयर टू एलिमेंट बी। उसके बाद पूछा है डी पार्ट में विच टाइप ऑफ आयन कटायन और अनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। तो ग्रुप ए सॉरी ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ग्रुप एलिमेंट ए जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, और आप लोगों को पता है कि ग्रुप 17 के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एक एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो एलिमेंट ए है वो एक आयन बनाने की कैपेसिटी रखता है, और वो भी वो अनायन बनाने की कैपेसिटी रखता है। अनायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं। तो एलिमेंट ए जो है वो अनायन फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, टेंडेंसी रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन अटोमिक नंबर 7 है एंड फॉस्फोरस अटोमिक नंबर 15 है, बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। आप लोगों को सबसे पहले तो बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाएगा नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे तो आप ये लिखेंगे कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद जो बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एल शेल में आएंगे। सिमिलरली फॉस्फोरस के लिए अगर देखें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है, विच मीन्स कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो बचे कुचे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम शेल के अंदर आएंगे। एज यू कैन सी जैसे हम फॉस्फोरस में आते हैं तो क्या होता है, फॉस्फोरस के शेल्स की संख्या बढ़ जाती है, विच मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड उसका अट्रैक्शन कम हो गया है। और नाइट्रोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर बेसिकली नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में हम क्या चाहते हैं कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो स्ट्रांग हो, अगर स्ट्रांग होगा तो दे विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे विल बी मोर रिएक्टिव। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं इन अ ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है, तो फॉस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। और यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बताता है, कैसे रिलेट करता है उसकी पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन कैसे डिसाइड होती है, अगर किसी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो आप सबसे पहले ये देख लो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब से आप लोग उसकी पोजीशनिंग कर पाएंगे कि वो एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। ग्रुप डिसाइड करने के बाद आप ये देखेंगे कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से नंबर ऑफ शेल में है, शेल का नंबर पता चल जाएगा तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो कौन से पीरियड के अंदर बिलोंग करेगा। तो बेसिकली एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत रिलेट करता है, बहुत बताता है हमें कि उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो पूछा जा रहा है कि कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जैसी कौन से दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, इसके जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाला कौन सा एलिमेंट है, और आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बताए गए। तो ग्रुप 2 के अंदर मैग्नीशियम भी आता है जिसका एटॉमिक नंबर है 12। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कैल्शियम के जैसी ही होंगी, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम वैलेंसी, दस दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें आपसे पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है और मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया है, उसके बीच का अंतर बताइए। तो आप दो कॉलम्स बनाएंगे, एक तरफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखेंगे, दूसरी तरफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखेंगे। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में आप लिखेंगे कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा हुआ है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में हम देख पाते हैं कि वहां पर 8 ग्रुप्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए और बी। हर एक ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया गया है, ऐसी कोई ग्रुपिंग हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद जो मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल है उसमें हम देख पाते हैं कि नोबल गैसेस को कोई प्लेसमेंट नहीं दी गई है फिलहाल, क्योंकि उनके टाइम तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनते वक्त तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई थी, जिसकी वजह से नोबल गैसेस को एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया, ग्रुप नंबर 18 में रखा गया। उसके बाद जो मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल है वहां पर आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं मिलवा रही थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्योंकि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसलिए आइसोटोप्स को जगह मिल जाती है, क्योंकि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके सारे आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो ऐसे फॉर्म्स होते हैं एक एलिमेंट के जिसके डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं लेकिन सेम एटॉमिक नंबर है। तो एक ही एटॉमिक नंबर सारे के सारे आइसोटोप्स को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यहाँ पर अलग अलग प्लेसमेंट देने की जरूरत नहीं है अलग अलग आइसोटोप्स को। तो ये थे सारे डिफरेंसेस बिटवीन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसी के साथ में आपका चैप्टर फिनिश हो गया, हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस फिर से खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कहीं पर भी आपको इस चैप्टर में दिक्कत आ रही हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।